हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी अमन कहने लगा कि मैं मरते दम तक जाऊंगा, लेकिन इस गिफ्ट को खुद से अलग नहीं करूंगा। वो कोट पर लगाने वाला ब्रोच नहीं था। तारा ने सोचा कि अगर ये ब्रोच अमन के कोट पर लगेगा तो अमन सुरक्षित हो जाएगा और तारा को उसके किसी सवाल का जवाब भी नहीं देना होगा, क्योंकि अगर वो उस फूल को देती तो वो थोड़ी देर हाथ में रखकर कहीं वापस रख देता। इसीलिए तारा को ये आइडिया आया था। अमन जल्दी ही उसके सामने मौजूद था। अमन को देखकर तारा ने जल्दी ही उसके कोट पर वो ब्रोच लगा दिया। अमन ने वो ब्रोच देखकर कहा, क्या बात है, आज मेरी बीवी मेरे लिए पहली बार कोई गिफ्ट लेकर आई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा मुस्कुरा उठी और कहने लगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे दिए गए इस गिफ्ट को बिल्कुल भी अपने आप से अलग नहीं करेंगे। तभी अमन कहने लगा कि मैं मरते दम तक जाऊंगा, लेकिन इस गिफ्ट को खुद से अलग नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उसने उस गिफ्ट को चूम लिया और तारा मुस्कुरा उठी। तब तारा सोचने लगे कि आखिरकार ये ब्रोच कितनी देर तक अमन को उस दानव से बचा पाएगा। आखिर रात को सोना भी होगा, कपड़े भी चेंज करेगा, वो कोट हमेशा पहने नहीं रखेगा। तभी तारा ने सोच लिया कि उसे कुछ न कुछ करना होगा और उस दानव का अंत करना होगा। काली शक्तियों का मालिक अमित आज बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने सोच लिया था कि जल्दी ही ये दानव काला धुआं बनकर अमन के जिस्म में प्रवेश कर जाएगा। वहीं तारा सोचने लगी कि क्या अमन को उसकी गलतफहमी में रहना होगा और जैसे ही वो दानव धुएं के रूप में भेजेगा तो कुछ न कुछ करके उसे अपने पास कैद करना होगा। ये सोचते हुए तारा ने जल्दी ही दादा महाराज से मदद लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि दादा महाराज काली शक्तियों के हर वार को जानते थे, हर तरह से जानते थे, और अब उन्हें ये समझ में आ चुका था कि जरूर उस दानव को उस काली शक्ति के मालिक अमित ने अपने जिस्म से बनाया होगा, इसीलिए वो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते थे। तभी उन्होंने तारा को आइडिया दे दिया था कि उसे अब क्या करना है। तारा ने जल्दी ही अपना आइडिया सोनम से शेयर किया, क्योंकि उन लोगों को संगीत के फंक्शन में भी पहुंचना था। वहीं अमित इसी सोच के साथ था कि अमन उसके वश में होकर संगीत के फंक्शन में आएगा, तो इसी बात से वो खुश था। वहीं दूसरी ओर तारा परी को अब अमन को भी अपने एतमाद में लेना था। जल्दी ही तारा ने इस काम में मदद के लिए किसी और को नहीं बल्कि करिश्मा जी को चुना था। तारा परी ये बात अच्छी तरह से जानती थीं कि करिश्मा जी एक सफ़ेद जिन है और उनके अंदर कितनी ताकत है, ये बात वो जानती थीं। अब उनकी ताकत इस्तेमाल करने का समय आ गया था, इसीलिए तारा ने करिश्मा जी को सारी बातें बताते हुए कहा था कि उसे उस काले धुएं के रूप को, जो कि दानव का एक रूप है, अपने तिलिस्मी कंगन का इस्तेमाल करके अपने वश में करना होगा। तिलिस्मी कंगन का इस्तेमाल करिश्मा जी ने तब से बंद कर दिया था जब से तारा परी ने जाने अनजाने में उन्हीं के बेटे मान राठौर पर उसका वार किया था, लेकिन अब चूंकि दादा महाराज का हुक्म था तो करिश्मा जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने तिलिस्मी कंगन का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। तिलिस्मी कंगन ही वो कंगन था जो काली शक्तियों के दानव को अपने वश में कर सकता था, और अब रीत को बड़े ही ध्यान से देखना था कि जैसे ही वो काला धुआं अमित के पास से निकलेगा, तारा और रीत को उसके बारे में बताना था और तारा को करिश्मा जी को बताना था। करिश्मा जी को वक्त पर जाकर उसे अपने वश में करना था। कहीं ना कहीं उन लोगों का प्लान पूरी तरह से तैयार था। वहीं काली शक्तियों की काला साया मल्लिका, जो कि काले रंग की साड़ी में थी, उनका काम पूरा हो चुका था। अब तो केवल उन्हें सही मौके पर उस शीशी को खोलना था जिसमें वो दानव कैद था। उसके बाद मल्लिका को, क्योंकि संगीत के फंक्शन में जाना था, इसीलिए उसने जल्दी ही संगीत के मुताबिक कपड़े चेंज कर लिए थे। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित भी तैयार होने लगा था। उन लोगों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो उन्होंने चाल चली है, इस चाल को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। वहीं मल्लिका तो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। कहीं ना कहीं उसका सपना आज पूरी तरह से पूरा होने वाला था। अमित के साथ वो जिस्मानी रिश्ता बनाने वाली थी। वो तो कब से अमन के साथ रिश्ता बनाने के लिए मर रही थी, और फाइनली आज वो दिन आ गया था जब वो उसके साथ होगी। अब धीरे धीरे पूरे गार्डन में एक बार फिर फंक्शन की तैयारी होने लगी थी। अमन का गार्डन इतना शानदार था कि उन्होंने सारे फंक्शन वहीं करने का फैसला लिया था और वहां पर जल्दी ही जितने भी मेहमान थे सभी जमा होने लगे थे। वहीं अक्षत खुराना तो आज बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार होकर आया था और जब से उसने सोनल को सफेद रंग के गाउन में और हीरे मोती जड़े कपड़ों में देखा था तब से उसने भी सफेद ही कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। वो सोचने लगा था कि चाहे वो परियों का मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करने की कोशिश कर सकता था जिससे वो सोनल को थोड़ा बहुत मैच कर सके। और सोनल का ध्यान उस वक्त मेहमानों पर था और एक परी का ध्यान काली शक्तियों के मालिक अमित पर था और तारा परी अमन के साथ थी क्योंकि वो एक पल के लिए भी अमन को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। धरा जल्दी ही संगीत के फंक्शन के लिए तैयार हो गई थी। वो आज काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने संगीत को लेकर। अमीरों का संगीत कैसे होता है कहीं ना कहीं वो देखना चाहती थी। और धरा जो कि होशो हवास में थी इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो तारा की किसी तरह की कोई बात नहीं मानेगी और इस अपने पल को एंजॉय करेगी और काली शक्तियों के मालिक अमित को तारा के बारे में बता देगी और साथ ही साथ उससे ये कहेगी कि वो उसे प्यार करती है और सच में उससे शादी करना चाहती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि अमित उसकी बात जरूर मान लेगा। वहीं दूसरी ओर सारी चीजें अब कंप्लीट हो चुकी थीं और वहीं सोनल परी संगीत की तैयारियों पर एक नज़र डालने के बाद वो एक बार फिर करिश्मा जी से मिलने के लिए जा रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आज उस दानव का भी अंत करना था जिसके बारे में उन्हें पता चल चुका था। साथ ही साथ अमित की सच्चाई संगीत में ही अमरेंद्र जी और अमन के सामने लेकर आनी थी। करिश्मा जी को सारी बातें ऑलरेडी तारा परी ही बता चुकी थीं तो करिश्मा जी तो इसी बात से खुश हो गई थीं कि कम से कम उनके पति के मन से अमित का जो मुंह चढ़ा हुआ है वो तो खत्म होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वो भी अब इस मैदान में कूद पड़ी थीं। वहीं सोनल परी जैसे ही हवेली के अंदर आने लगी अचानक से उसकी नजर अक्षत पर पड़ी। अक्षत को इस तरह से सफेद कपड़ों में देखकर सोनल मुस्कुराने लगी थी। वहीं अक्षत सीधा सोनल के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके सामने झुककर बड़े स्टाइल से कहने लगा था, परियों की रानी को हमारा प्रणाम। जैसे अक्षत ने इस तरह से थोड़ा सा झुककर ऐसा शायराना लहजे में कहा अब तो सोनल परी हैरान हो गई थी और जल्दी से चुप करते हुए उसे कहने लगी थी, तो ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं परियों की रानी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक परी हूं और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी याददाश्त खुली छोड़कर कुछ ठीक नहीं किया है, तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो।
तभी अक्षत सोनल की बात सुनकर मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, क्यों इतना डरती हो तुम, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें भी फर्ज बनता है ना कि तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए, और अगर तुमने मेरी यादें नहीं मिटाई हैं तो इसीलिए तो नहीं मिटाई हैं ताकि मैं तुम्हें प्यार करता रहूं। अब सोनल अक्षत की इस तरह की बात सुनकर हैरान थी लेकिन साथ ही साथ उसे कहीं ना कहीं इस बात का पता था कि अक्षत जो कह रहा था ठीक ही तो कह रहा था। आखिरकार सोनल परी ने उसकी यादें इसीलिए तो नहीं मिटाई थीं क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है। फिलहाल सोनल मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगी थी और अक्षत उसे देखता रहा था जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वहीं दूसरी ओर अमरेंद्र जी भी अब संगीत के फंक्शन में आ चुके थे लेकिन करिश्मा जी अभी तक नहीं आई थीं। तो करिश्मा जी को संगीत के फंक्शन में ना पाकर वो हैरान थे। उन्होंने एक नौकर को करिश्मा जी को देखने के लिए भेज दिया था। करिश्मा जी तो उस वक्त तारा और अमन के कमरे के बीच में जो स्पेस था वहां पर थीं क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि जो भी काला धुआं शक्ति आएगी वो इसी जगह से आएगी और तिलिश्मी कंगन का इस्तेमाल करके वो उसे अपने वश में कर लेगी। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए उसे बस उस काले धुएं का इंतजार था। वहीं मल्लिका तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आज हमेशा हमेशा के लिए अमन उसका होने वाला था, इसीलिए जल्दी ही उसने आज अपने आप को बड़ी ही खूबसूरती से तैयार किया था और अच्छी तरह से उसने अपने जिस्म पर खुशबू लगाई थी क्योंकि आज उसे पता था कि अमन उसके साथ रिश्ता बनाने वाला था, तो इस तरह से वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जैसे ही अब काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे कहा कि अब वो धीरे धीरे अमित के कमरे की ओर बढ़ें क्योंकि अब अमन के जिस्म में वो अपने दानव को प्रवेश करवाने वाला है, तो अब तुम्हें तारा को किसी न किसी तरह से अमन के पास से भेजना होगा और खुद उसके पास रहना होगा और हम इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। दानव के प्रवेश करते ही मैं उसे ऑर्डर कर दूंगा कि वो तुम्हारे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाए और जैसे ही वो तुम्हारे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाएगा इस वक्त हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं अमित अपने प्लान के साथ पूरी तरह से रेडी था। वहीं मल्लिका अमित की बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी और मन ही मन में सोचने लगी थी, आज तो मुझे इस काली शक्तियों के मालिक अमित पर भी प्यार आ रहा है क्योंकि ये वो बातें बोल रहा था जिसका इंतजार वो बरसों से कर रही थी। कल जल्दी ही मल्लिका अपने छोटे छोटे कदम लेती हुई बड़े ही स्टाइल से एकदम नागिन भांति चाल चलती हुई अमित के कमरे की ओर बढ़ने लगी थी क्योंकि उसे सबसे पहले तारा परी को भी तो किसी बहाने से अमन के कमरे से दूर करना था। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका के कमरे से जाने के बाद जल्दी ही उस शीशी को हाथ में लेकर जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, अमन अमन अमन,
मेरे प्यारे भाई अमन, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम देखो, जैसे ही मल्लिका के साथ तुम्हारा जिस्मानी रिश्ता बनेगा, तुम हमेशा के लिए गुमनाम की दुनिया में कैद होकर रह जाओगे। तुम फिक्र मत करना, मैं तेरी बीवी को भी संभाल लूंगा, साथ ही साथ तेरे होने वाले बच्चों को भी संभाल लूंगा। और तेरा जो ये खूबसूरत सा बंगला है, इसमें भी मैं रहूंगा, तो तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए अमित जोरों से हंसने लगा था। वहीं रेत पर ही बड़े ही ध्यान से अमित को देख रही थी और सुन रही थी, लेकिन उसे भी उस पल का इंतजार था कि कब वो उस काले धुएं को आज़ाद करे और वो इस बात के बारे में करिश्मा जी और तारा को बताएं। अब जल्दी ही अमित ने वो शीशी खोलना शुरू किया और उसमें से काला धुआं निकलना शुरू होते ही रेत परी गायब होकर तुरंत तारा परी के पास पहुंच गई थी और उसने बता दिया था कि अमित ने वो दानव आज़ाद कर दिया है। तभी तारा परी जल्दी से हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकली थी और करिश्मा जी की ओर इशारा कर दिया था। तारा परी के इस तरह से बाहर निकलने पर अमन हैरान था और कहने लगा था, क्या हुआ है तारा, तुम इस तरह से कमरे से बाहर क्यों जा रही हो? तभी तारा ने अमन की ओर देखते हुए कहा था, वो एक्चुअली कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखने गई थी कि सब लोग चले गए हैं गार्डन में, केवल हम दोनों ही बाकी हैं। तभी अमन ने अपना हाथ तारा की कमर पर कस लिया था और कहने लगा था, अगर तुम्हें अकेले में रोमांस करना है तो तुम बता देती, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने होंठों को तारा की गर्दन पर रख दिया था, लेकिन तारा तो उस वक्त कुछ और ही सोच रही थी। और अब इससे पहले कि वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, तभी अचानक मल्लिका वहां आ गई थी और उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के बाहों में देखकर और अमन को तारा को चूमते हुए देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहने लगी थी, तारा जी, आपको नीचे करिश्मा जी बुला रही हैं, क्योंकि सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। तारा को वहां से भेजने के लिए मल्लिका ने झूठ बोल दिया था। तारा सोचने लगी, बेवकूफ काला साया, करिश्मा को तो मैंने ही काम पर लगा रखा था। तभी देखते ही देखते तारा परी की आंखों के सामने मल्लिका का विजुअल आने लगा था कि मल्लिका ने किस तरह से अमन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। तारा परी को बहुत गुस्सा आया था। क्या तारा का प्लान पूरा हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।